आप अभी एआई यूज कर रहे हैं और शायद आपको रियलाइज भी नहीं होगा कितना। नेटफ्लिक्स आपको क्या रेकमेंड करता है? मैप्स आपको ट्रैफिक से बचाने के लिए रीराउट करता है। सोशल मीडिया फीड डिसाइड करती है कि आप क्या देखेंगे और क्या नहीं। ईमेल का स्पैम फिल्टर, फोन का ऑटो करेक्ट। एआई पहले से ही आपकी जिंदगी में इतने सीमलेसली एम्बेडेड है कि आपने नोटिस करना बैंड कर दिया, और इन सब इंटरैक्शंस का एक फिजिकल कॉस्ट होता है। पानी, बिजली, जमीन, एयर क्वालिटी और किसी की नेबरहुड ये कॉस्ट चुका रही है। लेकिन यहां एक बात है, ये सिर्फ एआई के बारे में नहीं है, ये एक ऐसे पैटर्न के बारे में है जो हम जो कुछ भी कंज्यूम करते हैं उसमें दिखता है। और आज हम बात करेंगे कन्वीनियंस की असली कॉस्ट की। इसका क्या कॉस्ट है कि चीजें आपके पास इजी लगती हैं, और क्यों वो कॉस्ट समझना आपको एक्चुअली एक बेटर बिजनेस ओनर बनाता है। मुझे रिसेंटली पता चला कि मेरे टाउन के पास एक मॉड्यूलर बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटी प्रपोज की जा रही थी, मेरे टाउन के पास टेनेसी में। और मेरी पहली रिएक्शन बिल्कुल विसरल थी, बिल्कुल नहीं, यहां नहीं। और फिर मैंने खुद को रोका, क्योंकि वो रिएक्शन, वो नॉट इन माई नेबरहुड वाली फीलिंग, वही रिएक्शन है जो लोगों को डेकेड से होती रही है उन चीजों के बारे में जो हमारी कन्वीनियंस को पावर करती हैं। कॉन्गो की वोमेंस जो आपके फोन बैटरी के लिए कोबाल्ट प्रोड्यूस करती हैं, विदेश के वो फैक्ट्रीज जो आपका लैपटॉप बनाते हैं, वो पावर प्लांट्स जो आपका क्लाउड स्टोरेज चलाते हैं। हम सबसे कंफर्टेबल थे क्योंकि ये सब दूर था, किसी और का बैकयार्ड, किसी और का पानी, किसी और की हवा। लेकिन यह वो बात थी जिसे मैंने खुद के साथ प्रोसेस किया। अगर मैं अपनी नेबरहुड के लिए ये एक्सेप्ट नहीं करूंगी तो किसी भी नेबरहुड के लिए नहीं करनी चाहिए। इसका यही मतलब है ग्लोबल पर्सपेक्टिव का। सिर्फ तभी दुनिया के बारे में सोचना नहीं जब कन्वीनियंट हो, तभी सोचना जब उसकी कॉस्ट आप खुद भर रहे हो। और मैं आपके साथ ऑनेस्ट रहना चाहती हूँ, ये कॉन्वर्सेशन मेरे लिए नए नहीं थी जब डेटा सेंटर प्रपोजल एक सिटी प्लानिंग एजेंडा पे आया। मैंने सस्टेनेबिलिटी में ऑलमोस्ट माइनर किया था। मैंने एक डेकेड पहले एक थेसिस लिखा था कि मुंबई और दिल्ली के सेंटर सिटी में हर बिल्डिंग के ऊपर ग्रीन रूफ होनी चाहिए। मेरे पास टेंपल यूनिवर्सिटी से अफ्रीकन अमेरिकन स्टडीज और सोशियोलॉजी में अंडरग्रेड डिग्रीज हैं। मैं अपनी अडल्ट लाइफ के ज्यादातर टाइम से एक्सट्रैक्शन, सप्लाई चेन्स और ये सोच रही हूँ कि कन्वीनियंस की असली कॉस्ट कौन भरता है। मैं वीगन हूँ और उसका एक रीजन एनवायरमेंटल है। प्लांट बेस्ड डाइट मीट हैवी डाइट के मुकाबले 75% कम ग्रीन हाउस गैस इमिशंस प्रोड्यूस करती है और 75% कम जमीन यूज करती है। ये मैंने अपनी MBA थीसिस लिखते वक्त सीखा। ये 15,000 से ज्यादा लोगों का ऑक्सफर्ड स्टडी है। वीगन होना किसी इंडिविजुअल के लिए प्लैनेट के लिए सबसे इम्पैक्टफुल चॉइसेस में से एक है, और ये मेरा चॉइस था जो मैंने सालों पहले किया। मैंने 2 डेकेड से ज्यादा वक्त से मीट नहीं खाई, लेकिन जैसे हर वो चीज जिस पर हम अपनी प्रिविलेज जिंदगी में रिलाई करने लगते हैं, डेटा सेंटर की कॉन्वर्सेशन लार्जली बैकग्राउंड नॉइज थी, जब तक नहीं रही। प्रिविलेज अक्सर ऐसा ही काम करता है, अगर ध्यान दो तो सुन सकते हो ये नॉइज। लेकिन कन्वीनियंस आपको ऑप्शन देती है ना सुनने का, और एक ब्लैक वुमन होने के नाते जो हिस्ट्री, एक्सट्रैक्शन और एनस्लेवमेंट के बारे में डीपली अवेयर है, मैंट अ बिजनेस एज यूजुअल के साथ आगे नहीं जा सकती जब वो नॉइज फोरग्राउंड में आ जाए। मैं रेडिकल अकाउंटेबिलिटी से जीती हूँ। मतलब ये कि जब आप किसी चीज के पीछे की एक्सट्रैक्शन समझ लेते हैं तो आप अपना बिहेवियर बदल लेते हैं, परफॉर्मेंस की तरह नहीं, प्रैक्टिस की तरह। यही वजह है कि मैं एडेड शुगर प्रोडक्ट्स नहीं खरीदती। सिर्फ डाइट चॉइस नहीं, सप्लाई चेन चॉइस भी। एक बार जब आप शुगर प्रोडक्शन की हिस्ट्री समझ लेते हैं, उन 12.5 मिलियन एनस्लेव्ड अफ्रीकन से लेकर
जो अमेरिकाज में ओवरवेलमिंगली शुगर प्रोडक्शन के लिए ले जाए गए थे, आज इंडिया के शुगर केन फील्ड्स में होने वाले डेट बॉन्डेज तक आप यूज उनसी नहीं कर सकते। यही वजह है कि मैं यूएई नहीं जाऊंगी जब से मैंने जाना कि वो स्काई स्क्रेपर्स कैसे बने। यही वजह है कि मैं सोचती हूँ कि मेरी चॉकलेट कहाँ से आती है, किसने वो बनानास उगाए जो मेरी स्मूथी में है, और उस ऑर्गेनिक अवोकाडो की असली कॉस्ट क्या है मेरे प्लेट में। आज मैं बात करूंगी उस एक्सट्रैक्शन के पैटर्न की जो हम कंज्यूम करते हैं, लगभग हर चीज में दिखती है। एआई डेटा सेंटर्स उस पैटर्न में क्या ऐड कर रहे हैं, बड़े कंपनीज कैसे हैंडल कर रहे हैं, ये सब और यह सब आपसे, आपके बिजनेस से और अन ऑप्शन से क्यों कनेक्ट करता है जो आप बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि यह एक सिस्टम्स थिंकिंग प्लेटफॉर्म है, और सिस्टम्स थिंकिंग का मतलब है पूरा बोर्ड देखना, सिर्फ वो स्क्वायर नहीं जिस पर आप खड़े हैं। सेटल इन, मैं हूँ मकेडा बुएम। मैंने टेक सेल्स में नियरली $10 million क्लोज किए हैं, 4 years में 7 figures कमाए हैं ऐसे करते हुए, और यहाँ मैं सर्विस बेस्ड बिजनेस ओनर्स को सिखाती हूँ कि AI, automations, systems और एजेंट्स यूज करके ज्यादा मनी, टाइम और options कैसे क्रिएट करें। AI डेली की स्पीड से मूव कर रहा है और मैं आपको कीप अप करने में हेल्प करती हूँ। हम सोचते हैं कि हम इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स हैं, हम रिसाइकल करते हैं, जब हो सके तो ऑर्गेनिक खरीदते हैं, शायद रीयूजेबल बैग रखते हैं, लेकिन हमें में से ज्यादातर का एक ब्लाइंड स्पॉट है जो हम कंज्यूम करते हैं उसकी पूरी सप्लाई चेन के बारे में, और वो ब्लाइंड स्पॉट इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं है। इन्फॉर्मेशन हिडन नहीं है, ढूंढना भी मुश्किल नहीं है। पश्चिम अफ्रीका के कोको फार्म्स में 2.1 million से ज्यादा बच्चे काम करते हैं, और कोको फार्मर्स अब चॉकलेट बर की वैल्यू का 6% पाते हैं जो 1970s में 50% हुआ करता था। बांग्लादेश के गारमेंट वर्कर्स लगभग $96 महीने कमा रहे हैं, जबकि फास्ट फैशन इंडस्ट्री $148 billion जनरेट करती है, और इन वर्कर्स में से 2% से भी कम लिविंग वेज कमाती हैं। ड्रग कार्टेल्स ने मेक्सिको की अवोकाडो इंडस्ट्री में घुसपैठ की है जो $2.5 billion से ज्यादा एनुअल एक्सपोर्ट्स जनरेट करती है, और इस फ्रूट को उगाने के लिए लाख एकर्स जंगल इलीगली साफ कर दिया गया जो आपके ग्रोसरी स्टोर में आ जाता है। एक्वाडोर के बनाना प्लांटेशन वर्कर्स एक दिन में कुछ डॉलर्स कमा रहे हैं, जबकि ऊपर से एरोप्लेन से टॉक्सिक फंजीसाइड्स स्प्रे की जा रही हैं। आप इनमें से हर एक चीज देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो सवाल अवेयरनेस का नहीं, सवाल ये है कि जो हम पहले से जानते हैं उसका क्या करते हैं, और इश्यू है कॉग्निटिव डिसोनेंस। हम एक साथ दो सच होल्ड करते हैं और उन्हें कोएग्जिस्ट करने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। हम जानते हैं कि बच्चे हमारी कोको कात रहे हैं, हम चॉकलेट भी बहुत पसंद करते हैं, हम जानते हैं कि गारमेंट वर्कर्स अपने फैमिलीज को नहीं खिला सकती, हम ₹500 की शर्ट भी चाहते हैं, हम जानते हैं कि अवोकाडो प्रोडक्शन कार्टेल वायलेंस और डिफॉरेस्टेशन को फ्यूल कर रही है, हम ग्वाकामोले भी चाहते हैं अपने नचोस के साथ, और ये पैटर्न मैंने नोटिस किया है। हम यूजुअली एक कॉज चुनते हैं, एक इशू जो हमसे रेजोनेट करता है, और हम अपनी एनर्जी वहां लगाते हैं, शायद सस्टेनेबिलिटी, एनिमल वेलफेयर, वर्कर्स राइट्स या क्लाइमेट, और बाकी सब पे ब्लाइंडर्स लगा लेते हैं, क्योंकि ये इनकन्वीनियंट है ये रियलाइज करना कि जो कुछ भी हम करते हैं उसका एक कॉस्ट है। मैं समझती हूँ ये ओवरवेलमिंग है, आप हर सप्लाई चेन को अपने दिमाग में नहीं रख सकते जब आप एक बिजनेस भी रन कर रहे हैं, बच्चे भी पाल रहे हैं और कुछ मीनिंगफुल भी बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन सिस्टम्स थिंकिंग का मतलब है कम से कम वो पैटर्न तो देखना, चाहे आप हर इंस्टेंस ठीक नहीं कर सकते, और पैटर्न ये है, जब कोई चीज़ सस्ती और कन्वीनियंट होती है तो कोई कहीं ना कहीं बार बार वो डिफरेंस चुका रहा होता है। हर चीज़ की एक असली कॉस्ट होती है। अब यहाँ एआई के बारे में जो इंटरेस्टिंग है वो यह है, जब आप उन इंडस्ट्रीज को देखते हैं जो मैंने अभी डिस्क्राइब की, कोकोआ, शुगर, बनानास, एवोकाडोज, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, तो एक्सप्लॉयटेशन डायरेक्टली ह्यूमन है, बच्चे मचेतीस के साथ, वर्कर्स डेड बॉन्डेज में, गारमेंट वर्कर्स लिविंग वेज का एक तिहाई से भी कम कमा रही हैं, कम्युनिटीज कार्टल्स से टेररिज्ड हैं। ये कलेक्टिवली ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज हैं, दुनिया के सबसे वल्नरेबल लोगों की मेहनत पर बानी। एआई और डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, ट्रिलियन विद अ टी, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन अलग दिखती है। डेटा सेंटर्स में कोई बच्चे नहीं हैं, सर्वर्स चलाने के लिए कोई फोर्स लेबर नहीं है, कॉस्ट है एनवायरमेंटल और इंफ्रास्ट्रक्चरल, पानी, बिजली, एयर क्वालिटी और उन कम्युनिटीज पर इम्पैक्ट जो इन फैसिलिटीज के पास बसी हैं। ये एक मीनिंगफुल डिस्टिंक्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि कॉस्ट एक्सेप्टेबल है, लेकिन इसका मतलब है कॉन्वर्सेशन अलग है, और ऑनेस्टली इसका मतलब है कि इसे ठीक करने का रास्ता ज़्यादा सीधा है। एनवायरमेंटल कॉस्ट को इंजीनियर किया जा सकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड लेबर के लिए पूर पॉवर्टी और करप्शन के सिस्टम्स को तोड़ना पड़ता है। तो देखते हैं कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक्चुअली क्या हो रहा है।
डेटा सेंटर्स नए नहीं हैं, वो डेकेड से इंटरनेट, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्ट्रीमिंग सर्विसेज और सोशल मीडिया को पावर कर रहे हैं। वो सर्वर फार्म्स जो आपका ईमेल, क्लाउड स्टोरेज, बैंकिंग ऐप और वीडियो कॉल्स चलाते हैं, वो सब सालों से इलेक्ट्रिसिटी और पानी कंज्यूम कर रहे हैं। जो बदला है वो है स्केल। एआई मॉडल्स को स्टैंडर्ड वेब सर्च या नेटफ्लिक्स स्ट्रीम से ड्रामेटिकली ज्यादा कंप्यूट पावर चाहिए। हर चैट जीपीटी क्वेरी स्टैंडर्ड गूगल सर्च से रफली 10 गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है, और चैट जीपीटी को हर रोज ओवर 1 बिलियन मैसेजेस भेजे जाते हैं। ग्लोबल डेटा सेंटर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 2026 तक 13 आवर्स तक पहुंचने की एक्सपेक्टेशन है। ये डेटा सेंटर्स को दुनिया में 5th लार्जेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर बना देगा, जापान और रशिया के बीच में। कोई कंपनी नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, कंट्री लेवल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और वो नंबर सिर्फ एआई डेटा सेंटर्स नहीं, सब डेटा सेंटर्स इंक्लूड करता है। जो इंटरनेट आप डेकेड से यूज कर रहे हैं, उसका पहले से एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर फुटप्रिंट था। एआई यूज एक्सेलरेट कर रहा है। देखते हैं बड़े कंपनीज ये कैसे हैंडल कर रहे हैं। शुरू करते हैं XAI से। ये इलॉन मस्क की एआई कंपनी है जिसने मेम्फिस, टेनेसी में कोलोसस डेटा सेंटर बनाया। उन्होंने इसे 122 दिन से कम में बनाया। मेम्फिस सिटी काउंसिल के मेंबर्स को न्यूज पे पता चला, कोई पब्लिक मीटिंग्स नहीं, कोई इन्वायरमेंटल रिव्यूज नहीं, कोई कम्युनिटी इनपुट नहीं। फैसिलिटी मिथेनी पावर्ड गैस टर्बाइंस पे चल रही है, बहुत सारी बिना परमिट्स के, और एक लीगल पिटिशन ने पाया कि यह लाइकली सिटी में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सोर्स है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स स्मॉग में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, एज्मा वर्सन करते हैं और कैंसर रिस्क बढ़ाते हैं। साउथ मेम्फिस, जहां ये फैसिलिटी ऑपरेट करती है, प्रेडोमिनेंटली ब्लैक कम्युनिटी है जिसने डेकेड्स से इंडस्ट्रियल पोल्यूशन डील किया है। फैसिलिटी रीजन की ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, मेम्फिस सैंड एक्विफर से डेली मिलियंस ऑफ गैलन्स खींचती है। कुछ दिन पहले ही एक्टिविस्ट्स ने फैसिलिटी के एंट्रेंस को ब्लॉक किया, गैस टर्बाइन्स के एयर पोल्यूटेंट्स फिल्टर करने के लिए रेस्पिरेटर्स पहेंगे। मेटा इंटरेस्टिंग है क्योंकि लामा, उनका एआई मॉडल ओपन सोर्स है, मतलब आप इसे डाउनलोड करके अपने हार्डवेयर पे रन कर सकते हैं। ये डिसेंट्रलाइजेशन में एक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन है। लेकिन मेटा का खुद का डेटा सेंटर फुटप्रिंट एक बड़ी कहानी बताता है, और ये रिमेम्बर करना जरूरी है कि वो डेटा सेंटर सिर्फ एआई नहीं पावर कर रहे, वो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और हर वो प्लेटफॉर्म पावर कर रहे हैं जो बिलियंस ऑफ पीपल डेली यूज करते हैं। उनकी टोटल डेटा सेंटर एनर्जी कंजम्पशन लेटेस्ट रिपोर्टिंग पीरियड में नियरली 15,000 गीगावाट आवर्स तक पहुंची। लुइजियाना में एक सिंगल मेटा डेटा सेंटर पर डे 23 मिलियन गैलन से ज्यादा पानी यूज कर सकता है। पर्सपेक्टिव के लिए, ये रफली 35 ओलंपिक स्विमिंग पूल्स का पानी है हर रोज एक फैसिलिटी के लिए। ये अप्रोक्सीमेटली 36,000 घरों को सप्लाई करने के लिए काफी पानी है। ओपन एआई के प्रोजेक्शंस दिखाते हैं कि वो डेकेड के अंत तक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 125 गुना बढ़ाने का प्लान रखते हैं। टेक्सास रीजन्स में जहां उनके डेटा सेंटर्स जा रहे हैं, वहां पब्लिक हॉस्पिटल से ज्यादा डेटा सेंटर्स होंगे। उनकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन सब रेजिडेंशियल होम्स कंबाइंड से ज्यादा होगी। मैंने टेक्सास में अपने दोनों बच्चे को जन्म दिया, सालों वहां रही, वहां शादी की, और हमें वहां से जाना पड़ा न सिर्फ इसलिए कि हीट अनबेरेबल थी, बल्कि एयर क्वालिटी भी ऑयल रिफाइनरीज की वजह से भयंकर थी, पानी टॉक्सिक था और फ्लडिंग अनबिलीवेबल था। और फिर भी मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन कंटिन्यू करती है पूरे देश की कन्वीनियंस पावर करने के लिए। एंथ्रोपिक जो कंपनी क्लॉड बनाती है, जो वो एआई मॉडल है जो मैं प्राइमरीली यूज करती हूँ और जिससे मैं सिखाती हूँ, उन्होंने यूएस डेटा सेंटर्स में $50 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। उन्होंने स्पेसिफिक कमिटमेंट्स की हैं, 100% ग्रिड अपग्रेड कॉस्ट खुद पे करना, न्यू पावर जनरेशन ऑनलाइन लाना, वाटर एफिशिएंट कूलिंग डिप्लॉय करना। ये मीनिंगफुली बेटर है बिना परमिट के गैस टर्बाइन्स चलाने से किसी ब्लैक नेबरहुड में, लेकिन फिर भी $50 बिलियन के डेटा सेंटर्स हैं। कॉस्ट को ज्यादा रिस्पॉन्सिबली मैनेज किया जा रहा है, एलिमिनेट नहीं किया जा रहा। मैं ये टूल्स हर रोज यूज करती हूँ, मैं इनसे बिल्ड करती हूँ, मैं इनसे सिखाती हूँ। ये पॉडकास्ट इनकी वजह से एग्जिस्ट करता है और मैं आपको पूरी पिक्चर बता रही हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी का एक रेस्पॉन्सिबल यूजर होना मतलब है पूरी सप्लाई चेन देखना। उसी तरह जैसे किसी भी चीज का रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर होना मतलब है ये समझना कि वो आप तक पहुंचने में क्या लगा। तो रिस्पॉन्सिबल यूज कैसा दिखता है आप जैसे किसी के लिए, बेंगलोर में एक अकाउंटेंट, या मुंबई में एक कोच, या हैदराबाद में एक स्पीकर, या दिल्ली में एक थेरेपिस्ट, या पुणे में एक फ्रैक्शनल एग्जीक्यूटिव जो एआई यूज करके बेटर बिजनेस बिल्ड कर रहा है। पहली बात ये समझो कि सारी एआई यूज इक्वल नहीं होती। एक सिंपल टेक्स्ट क्वेरी इमेज जनरेट करने या कस्टम मॉडल ट्रेन करने से सिग्निफिकेंटली कम एनर्जी यूज करती है। जब आप किसी काम को एक वेल क्राफ्टेड प्रॉम्प्ट से अकॉम्प्लिश कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ 30 मिनट एजेंट चलाने के, आप एक रिसोर्स कॉन्शियस चॉइस कर रहे हैं बिना आउटपुट सैक्रिफाइस किए। अगर आप एक स्पीकर हैं जो अपनी कीनोट को 10 कंटेंट पीसेज में रिपर्पस करने के लिए एआई यूज कर रहे हैं, तो एक सिंगल वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट जो सारे 10 प्रोड्यूस करे, वो 10 अलग सेशन से बेटर है। अगर आप एक कंसल्टेंट हैं जो क्लाइंट प्रपोजल्स बिल्ड करने के लिए एआई यूज करते हैं, तो एक टेम्पलेट सिस्टम जो आपके फाउंडेशन डॉक्यूमेंट्स रियूज करे, वो हर बार स्क्रैच से शुरू करने से ज्यादा एफिशिएंट है। ये सिर्फ एनवायरमेंटल चॉइसेस नहीं है, ये बेटर बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं। कम कंप्यूट, कम कॉस्ट, बेटर आउटपुट। दूसरी बात, ध्यान दो कि आप अपना पैसा और डेटा किन कंपनीज को दे रहे हैं। ये कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिटी इंपैक्ट और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे हैंडल करती हैं, इनमें रियल डिफरेंसेस हैं और वो डिफरेंसेस मैटर करते हैं। बिजनेस ओनर के तौर पर आपके वेंडर चॉइसेस आपकी वैल्यूज इन एक्शन हैं। तीसरी बात, और यहाँ ये मेरे लिए एक्साइटिंग हो जाता है, ओपन सोर्स और लोकल ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। यामा, मिस्ट्रल और दूसरे ओपन सोर्स मॉडल्स आपके अपने हार्डवेयर पे रन हो सकते हैं। अभी कॉम्प्लेक्स टास्क्स के लिए ओपन सोर्स मॉडल्स और फ्रंटियर मॉडल्स जैसे क्लॉड के बीच क्वालिटी गैप रियल है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड काम के लिए जैसे फॉर्म फिलिंग, डेटा प्रोसेसिंग, अपॉर्चुनिटी मैचिंग और सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन, लोकली रनिंग ओपन सोर्स मॉडल्स आज के लिए रेडी हैं। ये प्रैक्टिकली कैसा दिखता है? मैंने कुछ रिसर्च की है, लेकिन मैंने ये खुद अभी तक नहीं किया, तो थोड़ा सा स्केप्टिसिज्म रखना। आपके होम ऑफिस में एक हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड वाली मशीन, आप मॉडल डाउनलोड करो, आप रन करो, आपका डाटा आपकी प्रॉपर्टी से बाहर नहीं जाता, आपकी क्वेरीज किसी डाटा सेंटर में नहीं जाते, आपका यूसेज किसी और के अक्विफर से नहीं खींचता। इस काम के लिए सॉफ्टवेयर टूल्स जैसे ओलामा और llama.cpp अपेरेंटली फ्री और स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। जब मैं ये सिस्टम्स टेस्ट और यूज करना शुरू करूंगी तो ज्यादा अपडेट्स मिलेंगे। मैं टेनेसी में 3 acres पे रहती हूँ। थियोरेटिकली मैं एक लोकल AI सेटअप को अपने सोलर पैनल्स या एक रेजिडेंशियल ग्रेड रूफ विंड टर्बाइन से पावर कर सकती हूँ। मेरी क्वेरीज मेरे हार्डवेयर पे चलती, मेरी इलेक्ट्रिसिटी से पावर्ड, एम्बियंट एयर से कूल्ड। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये अभी अवेलेबल टेक्नोलॉजी है। सोलर, विंड, हार्डवेयर और मॉडल्स सब एग्जिस्ट करता है, बस पीसेस को फिट करना होता है। और ये एक ऐसे फिलॉसफी से कनेक्ट होता है जो मैं काफी वक्त से जी रही हूँ, इससे नाम मिलने से पहले से। इसे सोलर पंक कहते हैं और इसके कोर में ये बिलीफ है कि टेक्नोलॉजी और नेचर साथ काम कर सकते हैं, कि एक सस्टेनेबल फ्यूचर बिल्डेबल है, सिर्फ इमेजिनेबल नहीं, कि सोशल जस्टिस, फाइनेंशियल जस्टिस और इकोलॉजिकल जस्टिस एक ही प्रोजेक्ट है। अब मैं पूरी तरह सोलर पंक नहीं हूं, अगर हम ऑनेस्ट हो रही हैं। मैं नहीं मानती कि डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स हमेशा सेंट्रलाइज्ड वन से बेटर होते हैं। जैसे लगभग हर सिचुएशन में ये डिपेंड करता है, कॉन्टेक्स्ट मैटर्स, लेकिन ये प्रिंसिपल्स डीपली रेजोनेट करती हैं मेरे सोचने और बिल्ड करने के तरीके से। पॉडकास्ट का नाम लिटरली सीड एंड सोसाइटी है। सीड्स चीजें उगाते हैं, सोसाइटी सिस्टम है। टेक्नोलॉजी वर्किंग विद नेचर लोगों की सर्विस में शुरू से यही फिलॉसफी रही है। और यहां मैं एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करना चाहती हूं, क्योंकि यह मैटर करता है, गोल सिर्फ सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल मतलब है करंट स्टेट मेंटेन करना, गोल है रिजेनरेटिव, एक्टिवली स्टेट को इम्प्रूव करना। एक फूड फॉरेस्ट जो बिना रिप्लांटिंग के हर साल ज्यादा न्यूट्रिशन प्रोड्यूस करे, एक कंटेंट इंजन जो आपके ज्यादा टाइम कंज्यूम किए बिना कंपाउंड करे, एक AI सिस्टम जो आपके बिजनेस में कैपेसिटी क्रिएट करे जबकि आपकी डिपेंडेंस उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर कम करे जो आप कंट्रोल नहीं करते। रिजेनरेटिव मतलब है कि सिस्टम जो लेता है उससे ज्यादा वापस देता है, यही स्टैंडर्ड है। चलो ये वापस लाते हैं, इसलिए कि आपके लिए क्यों मैटर करता है, क्योंकि अगर आप एक कंसल्टेंट हैं, कोच हैं, स्पीकर हैं, थेरेपिस्ट हैं, डेंटिस्ट हैं, आर्किटेक्ट हैं, फ्रैक्शनल एग्जीक्यूटिव हैं, क्रिएटर हैं, कोई भी जो सर्विस बेस्ड बिजनेस रन करता है, ये अब्स्ट्रैक्ट नहीं है। आप ये टूल्स अभी यूज कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स सर्व करने के लिए, अपना कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए, अपने ऑपरेशंस रन करने के लिए। आपके AI टूल्स का सप्लाई चेन आपके बिजनेस सप्लाई चेन का हिस्सा है, चाहे आपने इस तरह सोचा हो या नहीं। मैं ज्यादा मनी, ज्यादा टाइम और ज्यादा ऑप्शंस की बात करता हूं, यही प्रॉमिस है। और जो कुछ भी मैं सिखाती हूं वो इन 3 चीजों की सर्विस में है। लेकिन आज मैं मोर ऑप्शंस का मतलब थोड़ा डीपर एक्सप्लोर करना चाहती हूं, क्योंकि ऑप्शंस कोई अब्स्ट्रैक्शन नहीं है, ऑप्शंस ये हैं। मैं जहां चाहूं वहां रह सकती हूं, क्योंकि मेरा बिजनेस किसी जिप कोड से टाइड नहीं है। ऑप्शंस ये हैं। मैं दोपहर ऑफ ले सकती हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम्स मेरे बिना चल रहे हैं। ऑप्शंस ये हैं, मैं उस क्लाइंट को ना कह सकती हूँ जो मेरे वैल्यूज से अलाइन नहीं करता, क्योंकि मेरे पास इनफ रेवेन्यू फ्लो हो रहा है कि मैंने डेस्परेशन में हाँ करना जरूरी नहीं। लेकिन उन सारे ऑप्शंस को कुछ चाहिए उनके नीचे, आपको ब्रीद करने के लिए हवा चाहिए, पीने के लिए साफ पानी चाहिए, हेल्थी सॉइल और सेफ फूड चाहिए, एक ऐसी बॉडी चाहिए जो इतनी हेल्थी हो कि आपने जो टाइम क्रिएट किया है उसे यूज कर सके। मोर टाइम का कोई मतलब नहीं अगर आप अपनी नेबरहुड के पोल्यूशन से बीमार हैं। मोर ऑप्शंस का कोई मतलब नहीं अगर रहने लायक जगहें उस इंफ्रास्ट्रक्चर से कंज्यूम हो रही हैं जो उन टूल्स को पावर करती हैं जो ये ऑप्शंस क्रिएट कर रही हैं। मोर मनी का कोई मतलब नहीं अगर आप साफ पानी नहीं खरीद सकते क्योंकि एक्वीफर खाली हो गया। पैसा रिसोर्सेज तक पहुंचने का एक कंड्यूट है। एंड गोल हमेशा रिसोर्सेज होते हैं, एक्सपीरियंसेस, लाइफ जीना, और अल्टीमेट रिसोर्सेज वो हैं जो आपको जिंदा रखते हैं, हवा, पानी, मिट्टी, खाना, शेल्टर। यही वजह है कि मैं एसेट बेस्ड वेल्थ की बात करता हूँ। यही वजह है कि मैं देन मॉर्गेज फ्री एकर्स पे रहती हूँ, एक फूड फॉरेस्ट के साथ और ब्लैकबेरी बुशेस के साथ जो हर साल बिना रिप्लांटिंग के वापस आते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये परेनियल वेल्थ है। होमस्टेड एआई बिजनेस से अलग नहीं है, ये वही फिलॉसफी है। ऐसे एसेट्स बिल्ड करो जो आपकी कांस्टेंट प्रेजेंस के बिना कंपाउंड करें। और जो आज मैं आपको बता रही हूं वो ये है कि एआई आपको ज्यादा कैपेसिटी देनी चाहिए ताकि आप ज्यादा हमन चीजें कर सको। हाइकिंग पे जाओ, बागबानी करो, किताब पढ़ो, डांस करो, म्यूजिक सुनो, एनर्जी और लोग और खुशी एक्सपीरियंस करो। यही है वो सब जो इस सब की सर्विस में होना चाहिए। और यहां मैं आपके लिए ये फुल सर्कल लाना चाहती हूं एक बिजनेस ओनर की तरह, क्योंकि ये एपिसोड हैवी फील हो सकता है और आप सोच रहे होंगे ठीक है लेकिन मैं इससे अपनी कोचिंग प्रैक्टिस में क्या करूं, इससे मुझे क्लाइंट्स क्लोज करने में कैसे हेल्प मिलती है, सप्लाई चेन्स के बारे में जानना क्यों मैटर करता है जब मैं अपना कंसल्टिंग बिजनेस स्केल करने की कोशिश कर रहा हूं। इसलिए मैटर करता है क्योंकि सिस्टम्स थिंकिंग एक कंपेटिटिव एडवांटेज है। जब आप सप्लाई चेन समझते हैं तो बिजनेस समझते हैं। जब आप किसी चीज की फुल कॉस्ट देख सकते हैं, सिर्फ स्टिकर प्राइस नहीं बल्कि ह्यूमन कॉस्ट, एनवायरमेंटल कॉस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, आप बेटर डिसीजंस लेते हैं अपने वेंडर्स के बारे में, अपनी प्राइसिंग के बारे में, अपने पोजिशनिंग के बारे में, अन टूल्स के बारे में जिस पर आप अपना बिजनेस बनाते हैं। मैंने सिस्टम्स थिंकिंग यूज करके मिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल्स क्लोज की हैं क्योंकि मैं रिलेशनशिप्स, मोटिवेशंस, कॉन्टेक्स्ट और एंटरप्राइज पार्टनरशिप में क्या जरूरी है ये समझती हूँ। जो कंसल्टेंट अपने एआई टूल्स की फुल वैल्यू चेन समझता है वो उस इंसान से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड ऑपरेटर है जो सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन प्राइस देखता है। जो स्पीकर ये आर्टिकुलेट कर सकता है कि एसेट बेस्ड थिंकिंग टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिस्टम्स और बिजनेस मॉडल्स पे कैसे अप्लाई होती है, उसके पास स्टेज पे ड्रॉ करने के लिए एक रिचर वर्ल्ड व्यू है। जो क्रिएटर ऐसी सिस्टम्स बिल्ड करता है जो रिजेनरेटिव हैं, जो जो लेते हैं उससे ज्यादा वैल्यू वापस देती हैं, वो कुछ ऐसा क्रिएट करता है जो डिप्लीट होने की बजाय कंपाउंड करता है। यही मतलब है मेरा जब मैं मोर ऑप्शंस कहती हूँ। ऑप्शंस सिर्फ रेवेन्यू से नहीं आते, वो अवेयरनेस से आते हैं, डिसर्नमेंट से, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ चॉइसेस करने से, इंस्टेड ऑफ कन्वीनियंस और अजम्पशन पे ऑपरेट करने के। अगर इन टूल्स को पावर करने के लिए रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर उन फिजिकल फाउंडेशंस को डिस्ट्रॉय कर रही है जिसकी एक लिवेबल लाइफ को जरूरत है, तो हमें उस टेंशन को होल्ड करना होगा, यूज इंटेरोगेट करना होगा और उन टूल्स को ही यूज करना होगा एक सॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए। टूल्स यूज करना बेंड नहीं करना, उन्हें रिस्पॉन्सिबली यूज करना, कॉस्ट समझना, बेटर के लिए पुश करना और जहां हो सके अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर ओन करने की तरफ बिल्ड करना ताकि पावर और बेनिफिट आपके पास रहे इंस्टेड ऑफ आपकी कम्युनिटी से एक्सट्रैक्ट करने के। मैं एक बात के साथ क्लोज करना चाहती हूं जो मेरे दिमाग में चल रही है। हम पहले भी ये वर्जन्स देख चुके हैं। पर्सनल कंप्यूटर ने सब बढ़ा दिया, स्मार्टफोन ने सब बढ़ा दिया, इंटरनेट ने सब बढ़ा दिया, लेकिन अनरेवोल्यूशंस की कॉस्ट किसी और की नेबरहुड में हुई। वो माइंस, फैक्ट्रीज, सप्लाई चेन्स जिनसे आपका स्मार्टफोन पॉसिबल हुआ, वो इतनी डोर थी कि आप प्रोडक्ट इंजॉय कर सकते थे बिना प्रोसेस का सामना किए। एआई अलग है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ विदेश में नहीं रहा, वो मेम्फिस में है, टेक्सस में है, लुइजियाना में है और वो छोटे छोटे टाउन्स में प्रपोज हो रहा है पूरे इस देश में। इस रेवोल्यूशन की कॉस्ट हमारी अपनी बैकयार्ड्स में आ रही है और सवाल ये है, क्या हम वैसे ही रिस्पॉन्ड करने वाले हैं जैसे हम हमेशा करते हैं? क्या हम उन्हीं लोगों की बात करते रहेंगे जो सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं और फिर वो सब करते हैं जो उसको नुकसान पहुंचाता है? क्या हम अमेज़न में डिफॉरेस्टेशन पर उंगली उठाएंगे और फिर अपने खुद के एक्विफर्स को किसी और के प्रॉफिट के लिए ड्रेन होने देंगे या इस बार कुछ अलग करेंगे? क्योंकि एआई एक ग्रेट इक्वलाइजर है, मुझे यह डीपली बिलीव है। ये टूल्स लोगों को ऐसे स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी एक्सेस देते हैं जो पहले वेल्थ, क्रेडेंशियल्स और जियोग्राफी के पीछे गेटे कैप्ट था। बेंगलुरु में एक डेंटिस्ट वही सिस्टम्स बिल्ड कर सकता है जैसे दिल्ली में एक कंसल्टेंट, कोची में एक स्पीकर वही कंटेंट इंजन रन कर सकता है जैसे मुंबई में एक स्पीकर, हैदराबाद में एक थेरेपिस्ट और पुणे में एक कोच और अहमदाबाद में एक फ्रैक्शनल एग्जीक्यूटिव सब सेम लेवल का लेवरेज एक्सेस कर सकते हैं। ये रियल है, ये प्रोटेक्ट करने लायक है, लेकिन इसे प्रोटेक्ट करना मतलब है ये इंश्योर करना कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर इसे पावर करता है वो उन कम्युनिटीज को डिस्ट्रॉय ना करे जो इसे सर्व करना चाहिए। और इसका मतलब है ऑनेस्ट रहना कि हम क्या बिल्ड कर रहे हैं, कौन इसके लिए पे कर रहा है और हम इस प्रोसेस में क्या ले जाते हैं, हम एक्चुअली क्या डेवलप कर रहे हैं। और मैं डेवलप इन कोटेशन मार्क्स में कहती हूं क्योंकि काफी तरीकों से ये डिस्ट्रक्शन का सिनोनिम हो सकता है। मेरे प्रॉपर्टी पे हंड्रेड्स ऑफ ओक ट्रीज हैं, साफ पानी है और थ्राइविंग फर्टिल मिट्टी है, उन्हें बस सीड्स, सनलाइट और पानी चाहिए, कोई डेटा सेंटर या बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटी नहीं। मेरे पास सारे जवाब नहीं है, मैं इस ट्रेल में आपके साथ हूं, घूम कर आपको वो दिखा रही हूं जो मैंने अभी समझा। और जो मैंने अभी समझा वो ये है कि रिस्पॉन्सिबल एआई यूज सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप कैसे प्रॉम्प्ट करते हैं, यह उन टूल्स की पूरी सप्लाई चेन समझने के बारे में है जिस पर आप डिपेंड करते हैं और ऐसे फ्यूचर की तरफ बिल्ड करने के बारे में है जहां टेक्नोलॉजी दुनिया के साथ काम करे इंस्टेड ऑफ यूज कंज्यूम करने के। यही है मोर मनी, क्योंकि एफिशिएंट सिस्टम्स चलाने में कम कॉस्ट लगती है। यही है मोर टाइम, क्योंकि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ओन करना मतलब है ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर कम डिपेंडेंस जो अपने टर्म्स बढ़ा लेते हैं। और यही है मोर ऑप्शंस, क्योंकि जब जिन टूल्स से आप बिल्ड करते हैं वो उस दुनिया को थ्रेटन नहीं कर रहे जिसमें आप जीना चाहते हैं, तो फ्यूचर की बेस्ट पॉसिबिलिटीज बनी रहती हैं। अपने सर्विस बेस्ड बिजनेस में मोर मनी, टाइम और ऑप्शंस बनाने के लिए सब कुछ seedandsociety.com पे मिलेगा। न्यूज़लेटर के लिए साइन अप करो, हर वो एआई टूल ढूंढो जो मैं यूज और रेकमेंड करती हूँ, लैब्स और वर्कशॉप्स देखना जो मैं रन करती हूँ और ज्यादा ब्रेकडाउन्स के लिए ब्लॉग चेक करो या फ्री एआई एम्प्लॉयी रिपोर्ट करो, सब एक ही जगह। और अगर आपको ये शो पसंद आया और इससे कुछ वैल्यू मिली तो मैं अप्रिशिएट करूँगी अगर आप रेट करें और रिव्यू छोड़ सकें। यह इस फ्री एजुकेशन को ज़्यादा लोगों तक पहुँचने में हेल्प करता है और किसी ऐसा इंसान के साथ शेयर करो जिसे इससे ज़रूरत है। तब तक के लिए बीज डालते रहो एक बेहतर सोसाइटी के लिए।